सुर्खियों में नमस्कार श्रोताओं, सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुभा रोहतगी और आज की चर्चा का विषय है प्रधानमंत्री मोदी के केरल और तमिलनाडु का दौरा। इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर। शेखर जी, आकाशवाणी के सुर्खियों में कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
धन्यवाद
शेखर जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केरल और तमिलनाडु का दौरा किया। इस साल इन दोनों दक्षिणी राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, इस संदर्भ में आज के दौरे कितने महत्वपूर्ण थे?
तमिलनाडु में जितने पार्टीज है उन सबको एकजुट करके एक मंच पे लाने का काम बीजेपी ने किया है। आज उस कार्यक्रम का आप कह सकते हैं कि जो तमिलनाडु जो विधानसभा चुनाव का ब्यूगल आज बज चुका है। प्रधानमंत्री स्वयं वहां उपस्थित होके आज तक जितने दल थे वो आपस में जो लड़ रहे थे, जो डीएमके विरोधी दल है उनको इकट्ठा करके एनडीए के बैनर में लाने में बहुत बड़ी सफलता मिली है भाजपा को। और प्रधानमंत्री वहां जाके एक बड़ा आह्वान किया है, वो है कि तमिलनाडु को डीएमके के भ्रष्ट जो शासन चली आई है अभी तक उससे मुक्त करवाना है। और केरल में भी आपने देखा वहां भी विधानसभा चुनाव अप्रैल में होने की है और वहां अभी भी जो समाप्त हुआ नगर निगम चुनाव में जिस तरह बीजेपी ने तिरुवनंतपुरम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बड़ी जीत हासिल की, साथ में त्रिपुरा जो कोचिन के निकल के है जो एर्नाकुलम के पास है वहां भी जीत और उसके अलावा पालक्काड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी जीत हासिल। एक प्रकार से आप देख रहे हैं कि पिछले लोकसभा चुनाव में यानी 2025 चुनाव में भी एक लोकसभा सीट इनको मिली थी, वो है त्रिशूर लोकसभा सीट। तो ये लगातार हमेशा कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी नॉर्थ इंडिया की पार्टी है, हिंदी थोपने वाली पार्टी है, दक्षिण भारत लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इस तरह का हमेशा जो कैंपेन रहा है उस कैंपेन को पूरा आप जो देख रहे हैं कि पूरा चीजें बदल रही है। पहली बीजेपी सरकार दक्षिण भारत में कर्नाटका में बनी थी, उसके बाद लगातार बीजेपी सरकार बनी है, कई बार बनी है। अभी वैसे ही तेलंगाना चुनाव में भी आपने देखा होगा एक मुख्य विपक्ष के रूप में उभर के आई है वहां पे तेलंगाना में भी। तो लगातार बीजेपी की कोशिश है कि दक्षिण भारत में भी जैसे उत्तर भारत में एक नेचुरल पार्टी ऑफ गवर्नेंस जो इमेज इनको मिला है वो वहां मिलना चाहिए। देखिए केरला में लगातार वामपंथी सरकार 5 साल के बाद अभी 10 साल कंप्लीट करने वाली है, सेकंड टर्म चल रहा है
जी।
लेकिन इस 5-10 साल में जिस तरह भ्रष्टाचार की जो हम रूपरेखा वहां देख रहे हैं, इतना तक सबरीमला मंदिर को भी नहीं छोड़ा है, जिस बात को आज पीएम ने लोगों के सामने भी कहा कि अगर बीजेपी नेतृत्व में सरकार वहां बनेगी तो इसके पूरी जांच करवाएंगे। देखिए जितने श्रद्धालु हैं सबरीमला को देश भर से लोग जाते हैं, वहां मंदिर से सोना चोरी ये सबको एक प्रकार से चौंकाने वाली बात है और श्रद्धालु बहुत दुखी थे, तो वो केरल की बात है।
शेखर जी चलिए ये जो आप केरल की बात कर रहे हैं उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो अगर केरल की बात करें तो ये एक इकलौता ऐसा दक्षिणी राज्य है जहां पर अब तक भाजपा को काफी मुश्किल रही है अपनी पैठ जमाने में। जैसा कि आपने खुद कहा कि इस राज्य से पहला जो सांसद राज्य इनको मिला वो पिछले लोकसभा चुनाव में मिला, अब तक इस राज्य से केवल भाजपा के एक ही एमएलए रहे हैं और जो सबसे कह सकते महत्वपूर्ण जीत जो आपने कही कि वो पिछले महीने तिरुवनंतपुरम के म्युनिसिपल इलेक्शन में इनको मिली। तो एक ऐसे समय में जब पार्टी राज्य में अपनी बढ़ाने की कोशिश कर रही है, प्रधानमंत्री के दौरे ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ साथ मतदाताओं को क्या संदेश दिया है?
केरल के लोगों ने देख चुके हैं, देखे एक कांग्रेस के नेतृत्व में यूडीएफ की सरकार देखे, उसके बाद वामपंथी यानी मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में एक एलडीएफ लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की सरकार देखे। हमेशा केरल में सरकारें रिपीट नहीं होती है, लेकिन ये जो सरकार अभी जो बनी 2016 में पहली बार आई, उसके बाद 2021 में भी जीती, अभी 10 साल हो रहा है और पिनाराई विजयन के नेतृत्व में वामपंथी सरकार चल रही है। लेकिन लगातार जिस तरह की ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रहे हैं और ये म्युनिसिपल चुनाव में जो वामपंथी दलों की बड़ा झटका मिला है, क्योंकि बीजेपी तो 3 जगह और बाकी जगह भी उनकी कॉर्पोरेटर्स जीत के आए हैं, लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व में जो यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट है तो लग रहा है कि फिर दोबारा वापस आना मुश्किल है। और इस म्युनिसिपल चुनाव में नगर निगम चुनाव में मार्क्सिस्ट पार्टी का यही कैंपेन था कि इनका फिर दोबारा और एक टर्म यानी थर्ड टर्म पिनाराई विजयन को देने की बात थी, लेकिन लोगों ने उस बात को नकारा है। ऐसे समय में प्रधानमंत्री जाके वहां इलेक्शन ब्यूगल बजा के बीजेपी कार्यकर्ता और बीजेपी के ये उनके अंदर एक प्रकार से उत्सव बढ़ा दिया, साथ में लोगों के सामने दिखा दिया कि बीजेपी अच्छी विकल्प बन सकती है।
केरल में आज प्रधानमंत्री ने कई विकास परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई। पहले सुनते हैं कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा।
आज केरला के विकास के लिए केंद्र सरकार के प्रयासों को नई गति मिली है। आज से केरला में रेल कनेक्टिविटी और सशक्त हुई है। तिरुवनंतपुरम को देश का बड़ा स्टार्टअप हब बनाने के लिए पहल हुई है। आज केरला से पूरे देश के लिए गरीब कल्याण से जुड़ी एक बड़ी शुरुआत भी हो रही है। आज पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है। इससे देश भर के रेहड़ी ठेले फुटपाथ पर काम करने वाले साथियों को लाभ होगा। मैं विकास की, रोजगार निर्माण की इन सभी योजनाओं के लिए केरला की जनता को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं।
तो शेखर जी, जैसे भी हम प्रधानमंत्री को सुन रहे थे, उन्होंने विकास की बात की और प्रधानमंत्री और भाजपा की जो पीछे सालों में हमने जो एक बात देखी वो ये कि वो हमेशा विकास की बात करते हैं। तो केरल में जब प्रधानमंत्री ने ये विकास परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई, उसको देखते हुए मजबूत सोशल इंडिकेटर्स वाले इस राज्य में उनके विकास का एजेंडा कैसे काम करता है और कैसे काम करेगा?
देखिए, जब 2016 में भी जब वामपंथी पिनराई विजयन के सरकार के नेतृत्व में बनी थी, तब भी प्रधानमंत्री का मैसेज पिनराई विजयन को यही था कि अलग अलग राजनीतिक विचारधारा हो सकते हैं हमारे, लेकिन केरला के विकास के लिए केंद्र सरकार उनके नेतृत्व में पूरे से पूरा काम करेगी। लेकिन लगातार जिस तरह पॉलिटिक्स वहां चली आई है और साथ में गवर्नेंस इश्यू को एक सवाल खड़ा हुआ है, इसको एक्सपोज करने के लिए प्रधानमंत्री ने लगातार केंद्र सरकार जितने भी मदद करे, फिर भी भ्रष्टाचार के कारण और राजनीतिक जो पुष्टिकरण के कारण जो सुरक्षा और विकास जिस तेजी से केरला में होनी चाहिए वो नहीं हुई है। आज आप देख लीजिए, जो कार्यक्रम सब हुए, वो रेल कनेक्टिविटी हो, लोक कल्याण के स्वनिधि क्रेडिट कार्ड की ये लेकर हो, या आज मातृ वंदना योजना, इसकी भी आज पीएम ने जिक्र किया है। तो लगातार देखिए, बार बार ये जो विपक्ष के शासित जो राज्य है, एक आरोप लगाते हैं कि केंद्र सरकार हमें कुछ नहीं देती है, पैसे नहीं देती है, लेकिन जो अवेलेबल फैक्ट्स है वो अलग कहता है कि जब जो पैसे भेजे जाते हैं केंद्र से, वो अगर ठीक तरह से खर्चे किए जाए और स्कीम की ग्राउंड पे इम्पैक्ट और ऑडिट मिल जाए, तो लगातार केंद्र सरकार की मदद चलती आई है। आज प्राइम मिनिस्टर ने यही कहा, भाई देखो, हमने जो क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं जो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, ये जो पीएम क्रेडिट कार्ड, ये इसमें केवल जो डिस्ट्रीब्यूट हुए वो केवल केरला में ही 10,000 बेनिफिशियरीज है और 600 लोग तो तिरुवनंतपुरम में है। कि पहले क्या होता था, ये नया क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड ये गरीब जो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए कभी क्रेडिट कार्ड नहीं होता था। और दूसरी बात, आज प्राइम मिनिस्टर ने ये भी इनॉग्रेट किया कि भाई साइंस एंड इनोवेशन क्षेत्र में आप देखें CSIR की एक इनोवेशन हब और साथ में एक रेडियो सर्जरी सेंटर एक मेडिकल कॉलेज में, कि साइंस इनोवेशन हेल्थ केयर इसका भी किया। और रेल कनेक्टिविटी आपने देखा, आज अमृत भारत एक्सप्रेस, 3 अमृत भारत एक्सप्रेस जो तमिलनाडु और केरल को जोड़ेगी, तो वो भी उन्होंने आज इनॉग्रेट किया है। तो बार बार प्रधानमंत्री कहते हैं विकसित भारत के लिए विकसित केरला की भी आवश्यकता है, विकसित तमिलनाडु की भी आवश्यकता है। यानी जब भारत सशक्त होकर अपना जो 2047 में जब एक विकसित भारत के रूप में उभर के आएगी, तब उसमें केरला, तमिलनाडु और सब राज्य उसमें शामिल होंगे। इनकी विकास ही देश की विकास है और देश की विकास इनकी विकास है, ये मैसेज बार बार पीएम देते आए हैं।
शेखर जी, अब बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी के तमिलनाडु दौरे के बारे में। हमने देखा कि आज जब उन्होंने एक जो आम सभा को संबोधित किया, तो उसमें AIADMK सहित NDA के कई अन्य घटक दलों के नेता भी उनके साथ मंच पर थे। तो विधानसभा चुनावों से पहले NDA का ये जो एकता का जो प्रदर्शन है, इससे क्या संकेत मिला और ये कितना महत्वपूर्ण था?
देखिए, अब जो DMK के नेतृत्व अभी जो शासन में है, उनको लग रहा था कि विपक्ष इकट्ठे नहीं हो पाएंगे और विपक्ष इकट्ठे ना हो तो उनके लिए सुविधा है, क्योंकि वो अलग अलग से लड़ेंगे तो जो ऑपोजिशन की वोट्स है वो भिन्न भिन्न हो जाएगा और DMK के लिए फायदा होगा। इसलिए लगातार BJP की तरफ से कोशिश थी कि जो पार्टियां DMK को विरोध करते हैं उनको सबको एक पंच पे आना होगा, एक फ्रंट पे आना होगा। इसीलिए इसकी शुरुआत आपने देखा 2025 अप्रैल में AIADMK और भाजपा के बीच में गठबंधन हुआ, एक अलायंस अनाउंस हुआ। उसके बाद उनको बाकी पार्टी उसको शामिल करने के लिए बहुत कोशिश हुई। जैसे आप देख लीजिए, आज जो लोग शामिल हुए, जैसे पाठाली मक्कल कच्ची के अनुमणि रामदास जो पहले भी केंद्र में मंत्री रह चुके वो मंच पे थे, और दूसरा TTV दिनकरन जो AIADMK से एक टूट होकर एक पार्टी जो चली गई थी वो भी आज फिर वापस आ गए। इन सबको परसुएड करके और एडप्पाडी पड़नीसामी जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं उनके नेतृत्व में जो एनडीए अलायंस वहां पे है उन सबको ले आने में जो बैकग्राउंड वर्क कहिए या होमवर्क कीजिए वो होमवर्क बीजेपी ने किया। जैसे प्रधानमंत्री ने कहा है कि डीएमके का सरकार मतलब है सीएमसी सरकार, यानी करप्शन माफिया और क्राइम। आज प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरह उनको डिस्क्राइब किया है और लोगों के सामने, क्योंकि जब तक विकल्प नहीं है तब तक आप परिवर्तन देख नहीं सकते, ये प्राइम मिनिस्टर का आज बड़ा मैसेज था।
तमिलनाडु में आज अपनी सार्वजनिक सभा के दौरान प्रधानमंत्री ने कई विषयों पर बातचीत की। उन्होंने तमिलनाडु के किसानों और मछुआरों के बारे में भी बात की। चलिए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
तमिलनाडु की बहुत बड़ी ताकत हमारे किसान है, हमारे फिशरमैन है। एनडीए की केंद्र सरकार की नीतियों के कारण देश में एग्रीकल्चर और फिशरीज में रिकॉर्ड प्रोडक्शन हो रहा है, क्योंकि एनडीए की केंद्र सरकार किसानों को, फिशरमैन को हर कदम पर सपोर्ट कर रही है।
प्रधानमंत्री के दौरे से पहले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में भाजपा और विभिन्न क्षेत्रीय पार्टियों के बीच एनडीए को मजबूत करने के लिए काफी बातचीत हुई थी, तो इसको देखते हुए आप क्या कहेंगे कि तमिलनाडु के महत्व के बारे में ये क्या दर्शाता है, ना सिर्फ एनडीए के लिए बल्कि भाजपा के लिए भी?
देखिए, बीजेपी लगातार एक कह सकते हैं कि लंबा सफर पे है तमिलनाडु में। देखिए, बीजेपी के सामने एक लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल लेकर चल रहे हैं। शॉर्ट टर्म में ऐसा है कि भाई सब पार्टी से मिलकर एक विपक्ष का अच्छा मजबूत फ्रंट बनना चाहिए, जिस कोशिश में अभी आपने देखा, जिसका आपने पीयूष गोयल का जिक्र किया, ये कई नेता लगे हुए थे उसमें, खास करके हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी काफी ये लिया है कि सब पार्टी को इकट्ठे आने में, सबको बुला के बातचीत करके। देखिए, बीजेपी का तो लंबा सफर है कि आज नहीं तो कल, लेकिन आप लोगों के लिए इस चुनाव में अगर आप जीत हासिल नहीं कर पाएंगे तो आपके लिए बड़ा नुकसान होगा। ये कहकर सबको एक मंच में लाना इतना आसान काम नहीं था, ये नंबर वन। नंबर टू, बीजेपी का हमेशा ये कोशिश है कि तमिलनाडु में देशभक्ति कई युवा हैं, उनको मौका मिलना चाहिए, उनकी आवाज सुनना चाहिए। बाकी जो पार्टियां हैं उनको इकट्ठा आना बहुत जरूरी है और बीजेपी का मानना है कि ये काम हम करते रहेंगे ताकि एक दिन लोग, जो तमिलनाडु के लोग हैं, बीजेपी को पूरी तरह स्वीकार करेंगे।
आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि केरल और तमिलनाडु के अलावा इस साल असम, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी में भी विधानसभा चुनाव होने हैं, तो हमने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी पिछले ही हफ्ते असम और बंगाल के दौरे पर भी गए थे और उन्होंने इन राज्यों में भी चुनावी बिगुल बजा दिया है। इस पूरे परिप्रेक्ष्य को साल की शुरुआत में जब प्रधानमंत्री 5 में से 4 उन राज्यों में जाते हैं जहां इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं, आप कैसे देखते हैं?
देखिए, असम में बीजेपी सरकार वहां पे 10 साल कंप्लीट कर चुकी है, अभी वहां पे हेमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व में सरकार चल रही है। वहां पे पूरा विश्वास है कि एनडीए को दोबारा मैंडेट मिलने की बहुत उम्मीद है, नंबर वन। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ अगर मेन ऑपोजिशन पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी है, और ये दो राज्य में भी आपने देखा होगा बीजेपी लगी हुई है कि अपने आप को, ये जो पार्टियां हैं, असम में तो अभी बीजेपी सरकार चल रही है, अपनी परफॉर्मेंस रिकॉर्ड पे दोबारा मैंडेट के लिए लोगों के पास जा रही है। लेकिन पश्चिम बंगाल में जो हालतें हैं, जिस तरह हालत बिगड़ी है, देखिए, ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस 2011 में आई, फिर 16 में जीती, 21 में जीती, आप फोर्थ टर्म के लिए ममता बनर्जी तैयार हो रहे हैं, जब सब जानते हैं बंगाल की हालत क्या है, बंगाल की महिला को सुरक्षा को लेकर जिस जैसे सवाल खड़े हुए, बंगाल के सुशासन को लेकर जो सवाल खड़े हुए, भ्रष्टाचार हो, क्राइम हो, ये कई बातें जो है, तो ये सारे चीजों को लेकर पश्चिम बंगाल में भी एक बीजेपी का मानना है कि वहां एक चेंज की बात चल रही है। पिछली बार भी बहुत कोशिश की, इस बार भी वही उम्मीद है। आप देखेंगे आने वाले महीनों में प्रधानमंत्री वहां भी जाएंगे, एक बार गए चुके हैं फिर दोबारा जाएंगे, क्योंकि बीजेपी का जो प्रधानमंत्री स्वयं चाहते हैं कि बीजेपी इन लोगों के पास जाए, अपने जो 11 साल के रिकॉर्ड यहाँ दिल्ली में है, जिस तरह केंद्र सरकार ने परफॉर्म किया है, इसको लेकर वहां जाए और कहें अगर ये सारे जो बड़े फैसले ले जा रहे हैं विकास के लिए, वो अगर ग्राम जमीन तक पहुंचना है, उन राज्यों में पहुंचना है, तो वहां पे एनडीए सरकार आना आवश्यक है।
जी श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। शेखर जी, आप सुर्खियों में कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े और प्रधानमंत्री के आज के केरल और तमिलनाडु के दौरे के बारे में आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी और इतनी महत्वपूर्ण चर्चा हमारे साथ की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद।
सुर्खियों में